जमानों की उमंग बाब नंबर 10 बियाबान में आवाज। ईमानदारों में से जो अरसा से मसीह माऊद का इंतजार कर रहे थे, उसकी राह तैयार करने वाला पैदा हुआ। जकरिया काहन और उसकी बीवी अलिशबा बांझ थीं। वो दोनों खुदा के हुजूर इस्तबाज थे। उन बुरे दिनों में उनकी मुकद्दस और पुरसकून जिंदगी में ईमान का ऐसा नूर चमका जैसे अंधेरी रात में सतारा। उस खुदा तरस जोड़े को उस फर्जंद नरीना की नवीद सुनाई गई जो खुदावंद के आगे आगे चलेगा और उसकी राह तैयार करेगा। जकरिया यहूदिया के पहाड़ी इलाका में रहता था, मगर वो यरूशलेम अपनी कहानत की बारी के लिए एक हफ्ता के लिए हेकल में आया था, क्योंकि साल में दो बार हर काहन को खिदमत के लिए आना जरूर था। और जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदा के मुकद्दस में जाकर खुशबू जलाए। लूका 8:1-9। और वो पाक मकाम में सोने के मजबा के सामने खड़ा था। बखूर का धुआं बनी इसराइल की दुआओं के साथ खुदावंद के हुजूर पहचा। उसे अचानक खुदावंद की हुजूरी महसूस हुई और उसने देखा कि खुदा का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दहनी तरफ खड़ा है। फरिश्ता का वहां होना जकरिया के हक में नेक शगुन था, मगर जकरिया ने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो न दी। कई सालों से वो नजात दहिंदा के आने की दुआएं मांग रहा था, और अब खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा कि जकरिया को बताए कि तेरी दुआएं खुदावंद के हुजूर कबूल हुई हैं। मगर खुदावंद की हुजूरी से वो घबराया और उस पर दहशत छा गई। उसे खुशी की बशारत दी गई, ऐ जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे खुशी और गर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदा के हुजूर में बुजुर्ग होगा, और हर गज में न कोई और शराब पीगा, और अपने मां के बतन ही से रूहुल कुदुस से भर जाएगा, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावन के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। जकरिया अच्छी तरह जानता था कि खुदावन ने बुजुर्ग अब्राहम को उसके बुढ़ापे में बेटा बख्शा था, क्योंकि उसने खुदा के वदों को सच मान लिया था। मगर कुछ देर के लिए बुजुर्ग जकरिया में इंसानी कमजोरी ने गलबा पा लिया। वो भूल गया कि जो कुछ खुदा वादा करता है उसे जरूर पूरा करता है। मुकद्दसा मरियम और जकरिया के ईमान में तजाद है। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ता की बातों का बिल्कुल शक न किया, यकीन करके कहा, देख मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक होगा। लूका 38:1। जकरिया अब्राहम और मुकद्दसा मरियम के बेटे की पैदाइश से बड़ी गहरी सच्चाई के असबाक मिलते हैं, जो बहुत धीरे धीरे सीखे मगर जल्द भुला दिए जाते हैं। हम कोई नेकी करने की सलाहियत नहीं रखते, मगर जो ईमान रखता है खुदा उसके लिए सब कुछ करता है। ईमान के जरिया से ही वादा का फर्जंद दिया गया। ईमान के जरिया ही रूहानी जिंदगी नसीब होती है। जनाब जकरिया के सवाल की जवाब में फरिश्ता ने फरमाया, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, और इसलिए भेजा गया हुआ कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। लूका 19:1। 500 साल पहले इसी जिब्राइल फरिश्ता ने बुजुर्ग दानियल को पेशंगोई बताई थी जो अलमसीह की पहली आमद तक मुहित थी। चूंकि मसीह मऊद की आमद निहायत करीब थी, इसलिए रूह ने बुजुर्ग जकरिया को तहरीक दी ताकि वो मसीह की जल्द आमद के लिए खुदा से इल्तजा करे। जिस फरिश्ता ने पेशनगोई की थी, उसी के वसीला से अब तकमील की खुशखबरी का संदेशा दिया गया, और मिकाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं। दानियल 21:10। मकाशफा में नजात दहिंदा जिब्राइल के बारे फरमाता है, उसने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। मकाशफा 1:1। और यूहन्ना आरिफ को उसने बताया, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हमहुदमत हूं। मकाशफा 9:22। ये कितना आला ख्याल है कि वो फरिश्ता जो खुदावंद के बेटे के दूसरे दर्जे पर है और खुदा के बेटे को बाद उसी की आसमान में ज्यादा इज्जत और बुजुर्गी है, वो खुदा का मकसद हम गहंगार इंसानों पर जाहिर करता है। बुजुर्ग जकरिया ने फरिश्ता के कलाम का शक किया, लेकिन इसकी सजा उसे ये मिली कि जब तक जो कुछ फरिश्ता ने फरमाया है पूरा ना ले, चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकई ना हो ले, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा। इसलिए तूने मेरी बातों का, जो अपने वक्त पर पूरी हूं की यकीन ना किया। लूका 20:1। ये खिदमत जो बुजुर्ग जकरिया अंजाम दे रहा था, इसमें कौम के गुनाहों की माफी और अलमसीह की आमद की दुआ शामिल थी। लेकिन जब बुजुर्ग जकरिया ने चाह के दुआ मांगे तो वो बोल ना सका। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। लूका 22:1। चूंकि उसे हैकल के अंदर मुतवक्के वक्त से ज्यादा देर लग गई, इसलिए लोग घबरा गए और सोचने लगे कि शायद खुदावन ने उसे मार दिया है। लेकिन जब वो हैकल से बाहर आया, उसका चेहरा खुदा के जलाल से चमक रहा था। बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मुकद्दस में रहिया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। लूका 22:1-23। और जब फरिश्ता की पेशनगोई पूरी हुई और बुजुर्ग जकरिया को खुदा ने बेटा दिया, तब वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा। उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई और यहूदिया के तमाम पहाड़े मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोच कर कहा, तू ये लड़का कैसा होने वाला है? ये सब कुछ अलमसीह की आमस की तरफ इशारा करता था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया ताकि उसकी राह तैयार करे। और बुजुर्ग जकरिया रूहुल कुदुस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि ऐ लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावन की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की माफी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तुलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे, और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया, और इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा। लूका 76:1-80। यूहन्ना की पैदाइश से पहले फरिश्ता ने कहा था, वो खुदावन के हुजूर बुजुर्ग होगा और हर गज न मैं न कोई शराब पिएगा, और अपनी मां के बतन ही से रूहुल कुदुस से भर जाएगा। लूका 15:1। खुदावंद। खुदा ने बुजुर्ग जकरिया के बेटे यूहन्ना को अजीम काम के लिए बुलाया था। इतनी बड़ी खिदमत इससे पहले किसी इंसान को ना सौंपी गई थी। इस काम में कामयाबी हासिल करने के लिए उसे खुदावंद ताला के साथ मिलकर काम करना था, और अगर फरिश्ता की हिदायत पर उम्माल करेगा तो जरूर खुदावंद का रूह उसके साथ रहेगा। यूहन्ना को खुदा के खादिन के तौर पर उसके आगे आगे चलना था कि बनी नौ इंसान को खुदा के नूर लाए। उसे उनके ख्यालात को नई सिमत देनी थी। उसे लाजिम था कि खुदा की पाकीजगी और रास्तबाजी से दुनिया को मुतासिर करे और उन्हें महसूस कराए कि उन्हें खुदावन खुदा की रास्तबाजी की जरूरत है। उसे खुद खुदा की हैकल बनना था, जहां खुदा का रूह सुकूनत करता है। इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए लाजिम था कि उसकी अपनी जिस्मानी सेहत निहायत आले हो और उसकी जहनी और रूहानी हालत हर लिहाज से उस्तवार हो। बदी वजह उसे अपनी इश्तिहा, जज्बात हर काबू पाना अजहद जरूरी था। उसे अपनी तमाम रूहानी और जिस्मानी कुवा पर कामिल एहतियार हासिल होना जरूरी था कि वो इंसानों के दरमियान मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हो सके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जमाना में लोग जाहिरी नुमाइश, दौलत और ऐशो निशात के रसिया थे। जिनसी रवाबित, शराबनोशी और दूसरी कबाहतों ने उन्हें जिस्मानी बीमारियों, اخلاقی انحطاط میں مبتلا کر رکھا تھا۔ روحانی طور پر وہ بے حس ہو چکے تھے۔ گناہ کو وہ گناہ ہی نہ سمجھتے تھے۔ جو کسی کے جی میں آتا بلا خوف کرتا۔ یوحنا آیا تاکہ ان سب برائیوں کی اصلاح کرے جو انسان کو ابدی زندگی سے محروم کر رہی تھیں۔ اس کا سادہ لباس اور سادہ غذا اس کے زمانے کے منہ پر تمانچہ تھا۔ تاہم پرہیزگاری کا جو سبق فرشتوں نے یوحنا کے والدین کو دیا، وہ بروے راست خدا کے تخت سے جاری ہوا تھا۔ بچپن اور جوانی میں سیرت کی اہمیت ہر چیز پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس دوران ضبط کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ اس کی تعلیم گھر میں جتنی زیادہ دی جائے گی، اس کا اثر اتنا ہی دیر پا ہوگا۔ اسی دوران پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ
یا بچی زندگی میں فتح مند ہوگا یا برباد ہو جائے گا۔ جوانی ایسا وقت ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے، اور اس بیج سے سیرت کی فصل تیار ہوتی ہے، اور یہ فصل اس دنیا اور آنے والی دنیا کے لیے ہوتی ہے۔
یوحنا بپتسمہ دینے والا نبی ہونے کی حیثیت سے والدینوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرنے کو تھا۔ مسیح کی پہلی آمد کے لیے راہ تیار کرنے کے لحاظ سے وہ ان کی نمائندگی کرتا تھا جو اب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو اپنی بزرگی کی خواہاں ہے، ہر طرف آزمائشیں اور گناہ کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی پاکیزگی اور راست بازی حاصل کریں، ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ابھی سے خود ضبطی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کریں۔ جذبات اور اشتہا انسان کے تابع ہوں۔ خود ضبطی نہایت ہی ضروری ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کی جان کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بزرگ زکریا کے بیٹے کو کہانت کی خدمت کے لیے تعلیم و تربیت دی گئی۔ اگر وہ ربیوں کے اسکول سے تربیت پاتا تو وہ اسے خدا کے کام کے نااہل بنا دیتے۔ اسی لیے خدا نے اسے ان استادوں کے پاس نہ بھیجا کہ خدا کے کلام کی تفسیر ان کی دانش کے مطابق سیکھنے، بلکہ اس نے اسے بیابان میں بلایا تاکہ وہ فطرت اور فطرت کے خدا سے حکمت حاصل کرے۔ اس کا گھر دور افتادہ پہاڑی علاقے میں تھا جہاں کئی اور پہاڑی غاریں موجود تھیں، مگر اس نے بیابان سے نظم و ضبط سیکھنے کے لیے ہر طرح کی عیش و نشاط کی زندگی سے پرہیز کیا۔ یہاں حالات اس کے موافق تھے تاکہ خود انکاری اور سادگی کی عادات اپنائے۔ دنیا سے بے نیاز ہو کر اس نے فطرت سے اسباق سیکھے۔ یہیں اس نے خداوند خدا اور اس کے مکاشفہ کا علم حاصل کیا۔ وہ کلام جو فرشتہ نے زکریا کاہن سے کیا تھا، وہ کلام اکثر یوحنا کے لیے دہرایا جاتا۔ بچپن سے ہی اسے معلوم تھا کہ اسے کیا خدمت انجام دینی ہے، اسی لیے اس نے اس مقدس امانت کو قبول کیا۔ تنہائی میں وہ معاشرے کے شک و شبہات، کم اعتقادی اور ناراستی سے اچھی طرح محفوظ تھا۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ وہ اکیلا آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بدستور گناہ سے دور رہتا، مبادہ وہ گناہ کے شکنجہ میں پھنس جائے۔ خدا کا نذیر ہونے کے ناطے میں اس نے عمر بھر کے لیے خود کو خدا کے لیے مخصوص کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کا لباس قدیم نبیوں کی طرز پر اونٹ کے بالوں کا تھا، اور وہ کمرے چمڑے کا پٹکا باندھے رہتا تھا، اور وہ ٹڈیاں اور شہد کھاتا جو اسے جنگل سے ملتا، اور پہاڑی چشموں کا صاف شفاف پانی پیتا۔ ان سب امور کے باوجود یوحنا بیکار زندگی بسر نہ کرتا، اور نہ ہی وہ مغموم رہتا۔ اکثر وہ عوام سے بھی ملتا جلتا اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا تھا اس کا اچھی طرح مشاہدہ کرتا۔ تنہائیوں میں خدا اس پر مکاشفے کھولتا، اور وہیں اسے سکھایا جاتا کہ کس طرح آسمانی پیغام بنی نو انسان تک پہنچانا ہے۔
اپنی خدمت کی لگن اس کے دل میں موجود تھی۔ وہ دعا اور گیان دھیان کے ذریعے اپنی روح کو مستعد رکھتا تاکہ اس خدمت کو پوری جان فشانی سے نبھا سکے جو اس کے سامنے ہے۔ بے شک بیابان میں بھی وہ آزمائشوں سے مستثنا نہ تھا، مگر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے حتیٰ الوسا کوشش کی کہ ابلیس کے داخلہ کا ہر راستہ بند کر دے۔ روح القدس کی مدد سے وہ ابلیس کے حربوں سے واقف ہو جاتا اور اس کا مقابلہ کرتا۔ यूहन्ना ने बयाबान में अपना स्कूल और मुकद्दस दोनों कायम कर रखे थे। बुजुर्ग मूसा की तरह मदियन की पहाड़ियों में वो खुदा की हुजूरी में था, जहां वो उसकी कुदरत के करिश्मे देखता। इसराइल के अजीम लीडरों की तरह शान शौकत से रहना उसकी किस्मत में ना था। वो तो ऊंचे ऊंचे देव हैकल पर्वतों में ना रहता था। उसके सामने तो मावाब के टीले और उसके पीछे यर्दन था, जो खुदा के जिक्र फिक्र में सना कुन्ना थे, जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को उस्तवार किया और उन्हें अपनी कुदरत से उनके बख्तर बांधे। बयाबान की उदासी और बदहाली हकीकत में बन इसराइल की हालत जार की सही अकासी करती थी। खुदावन का ताकिस्तान वीराने में तब्दील हो चुका था, फिर भी बयाबान के सर पर नीला आसमान उसकी पनाहगाह था। नीला और खूबसूरत आसमान बयाबान पर झुककर उसकी ढाल और सुपर का काम देता था। बादल जो गिर्द से आलूद जुल्मत और तूफान बरपा करते थे, वो खुदावंद के वादा की कौसे कज़े की याद ताज़ा करते थे। इसी तरह बनी इसराइल के ऊपर मसीह मौऊद के जलाल का नूर चमकने वाला था। उसके गज़ब के बादल उसके रहम के अहद की कौसे कज़े की बदौलत छुटने को थे। जब वो अकेला रात की तन्हाइयों में होता तो खुदा के उस वादा को पढ़ता जो उसने बुजुर्ग अब्राहम के साथ किया था, कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों की मानिंद बढ़ाऊंगा। नूर के तड़के से मावाब के पर्वत जगमगा उठते और उसे बताते कि सुबह का नूर किसे होना चाहिए। वो सुबह की मानिंद होगा जब सूरज निकलता है, ऐसी सुबह जिसमें बादल न हो। 2 सिमवाइल 4:23। इसी तरह उसने दोपहर की तेज रोशनी में उसकी शानो शिकवा को देखा। खुदावन का जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उसको देखेंगे। यसैया 5:40। यूहन्ना ने बड़ी जानफिशानी और नेक नियति से तूमारों में से मौऊदा मसीह की आमद के बारे तलाश किया, उसकी तलाश की जो शानअप के सर को कुचलेगा, इत्मीनान देने वाला, और उसे उस वक्त दुनिया में आना था जब दाऊद के तख्त पर हुक्मरानी करने वाले न रहेंगे। अब वो वक्त आ गया था। रूमी हुक्मरान ने सय्यून के पहाड़ पर अपना तख्त कायम कर लिया था और खुदावन के ला तब्दील कलाम के मुताबिक उस दौरान मसीह खुदावन पैदा हो चुका था। यसैया बनी का सहीफा, जिसमें मसीह मौऊद के वादे मरकूम थे, दिन और रात उसके जेरे मुताला रहते थे। वो रास्ती से मिस्कीनों का इंसाफ करेगा। एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानिंद होगा और तूफान से छीनने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी की जमीन में बड़ी चट्टान के साया की मानिंद होगा। लो आके को मतरूका न कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा न होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सर जमीन सिहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावन तुझसे खुश है, तेरी जमीन खावन वाली होगी। यसैया 4:14, 2:32, 4:62। बयाबान में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दिल जलाली मुकाशफा से भर गया। उसने बादशाह को उसके जलाल में देखा और अपने बारे भूल गया। उसने उसकी पाकीजगी देखी और जाना कि मैं निकमा हूं। चूंकि उसने इलाही जात के जाहो जलाल को देख लिया था, इसलिए वो बेखौफ खतर उसके खादिन के तौर पर इंसानों में जाकर मुनादी कर सकता था। वो बादशाहों के दरबारों में बेबाकी के साथ सीना तान कर खड़ा हो सकता था, क्योंकि वो शहनशाहों के शहनशाह के हुजूर सर बेसुजूद हो चुका था। यूहन्ना मसीह की बादशाही के बारे अच्छी तरह न जानता था कि वो किस तरह की होगी। वो भी दूसरों की तरह ख्याल करता था कि वो आकर अपनी कौम को दुश्मनों से रिहाई बख्शेगा, मगर आने वाला बादशाह रास्तबाजी में आने को था, ताकि इसराइल को मुकद्दस कौम बनाए, और यही उसके आने का बड़ा मकसद था। और वो समझता था कि यह सब कुछ उसकी पैदाइश के मौके पर बनी इसराइल को हासिल हो जाएगा। उसने देखा कि उसके लोगों को धोखा दिया गया है, वो अपने गुनाहों में मदहोश हैं और हर तरह तसल्ली पजीर हैं। उसने उन्हें उनकी उस गुनाह भरी जिंदगी से जगाना चाहा, और उसे आरजू थी कि पाकीजा जिंदगी की तरफ गामजन हों। वो पैगाम जो खुदा ने उसे दिया था उसका मकसद था कि उनकी बदी को उन पर आयां करके उन्हें गमजदा करे। इससे पहले कि खुशखबरी का बीज बढ़े और नश्वो नुमा पाए, लाजिम है कि दिल की जमीन उसके कबूल करने के लिए तैयार हो। इससे पेशतर कि वो खुदावंद खुदा से शिफा पाए, लाजिम था कि वो उन खतरनाक जख्मों से वाकिफ हों जो गुनाह ने उनके बदन पर लगाए थे। खुदा कभी भी अपने पयाम्बरों को गुनाहगारों की खुशामद करने नहीं भेजता। वो नापाक नजिस लोगों के पास अमन अमान का पैगाम नहीं भेजता, बल्कि खताकारों के जमीर पर वो भारी बोझ रखता है और कायलियत के यतर से उनके दिल छुल्ली छुल्ली कर देता है। खिदमतगुजार फरिश्ते उससे ऊपर खुदा के गजब की अदालत लाते हैं, जिसके बायस वो ये महसूस करता है कि मुझे खुदा की जरूरत है, और वो अचानक चला उठता है। मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? फिर खुदावंद का हाथ उसे खाक से उठाता है, और वही आवाज जिसने उसे झरका था अपनी मोहब्बत में उससे पूछती है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जिस वक्त यूहन्ना ने अपनी खिदमत का आगाज किया, उस वक्त बनी इसराइल परेशानी और बेकनाती का शिकार थे। वो किसी बड़े इनकलाब की तवक्को रखते थे। अरखलावस की माजूली के बाद यहूदिया बराह रास्त रूम के जेरे साया आ चुका था। रवि गवर्नरों के जुल्म तशद्दुद के अलावा बुतपरस्ती की तालीम और रस्म व रवाज ने कई गैरतमंद और बहादुरी इसराइली नौजवानों की जान ले ली जो रूमी उन पर थोपना चाहते थे। इस बर्बरियत ने यहूदियों के खिलाफ इसराइलियों के सीनों में नफरत की आग भड़का दी और उनके दिल में रोमियों से आजादी हासिल करने की तमन्ना अफसू हो गई। इस तमाम कश्मकश और लड़ाई भराई में बयाबान से एक आवाज आई जिसने सबको चौंका दिया, मगर यह आवाज उम्मीद आवाज उम्मीद से भरपूर थी जिसने लोगों में नई जान डाल दी। नबी ने मसीह मौत के आने की पेशनगोई कर रखी थी, मगर अब यूहन्ना ये ऐलान कर रहा था कि वो बहुत जल्द जाहिर होने वाला है। इस ऐलान को सुनकर उसके सामईन का जहन कदीम की पेशनगोइयों की तरफ रागिब हुआ। यूहन्ना ने अपने लिबास और तौर अतवार से इलिया की याद ताज़ा कर दी। इलिया की रूह और कुदरत में उसने कौम को उनकी बदकारी के बायस सख्त झड़का। उसका कलाम बड़ा सादा, मौसिर और कायलियत से भरपूर था। बास तो यहां तक सोचने लगे कि यह कदीम नबियों में से कोई जिंदा हो गया। तमाम इसराइली कौम में हलचल मच गई। लोग जौक दर जौक बयाबान में उसके पास आने लगे। यूहन्ना ने मसीह का ऐलान किया और लोगों को तौबा की मनादी की। गुनाह से पाकीजगी की अलामत के तौर पर उसने उन्हें दरियाए यर्दन में बैतसमा दिया। यूं उसने लोगों पर वाजे किया कि गुनाह ने हमें नजस कर दिया था, और जब तक हमारी जिंदगी में पाकीजगी ना आए, हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं। शहजादे, शरा के मौल्लिम, महसूल लेने वाले और किसान सभी नबी का पैगाम सुनने आए। खुदा की आगाही उन तक पहुंचाई गई। जितनों ने तौबा की, यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया। जो तौबा करता, उसके लिए लाजिम था कि वो बपतिस्मा ले, खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। कई फकीह फरीसी आए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके बपतिस्मा पाया। ये वही लोग थे जो खुद को दूसरों से बरतर ख्याल करते थे, और वो रयाकारी करते थे कि लोग उनको हकीकी और परहेजगार समझें। लेकिन उनके पोशीदा गुनाह उस वक्त आया हो गए जब उन्होंने अपनी खताओं का इकरार करके बपतिस्मा पाया। मगर यूहन्ना खुश था कि बहुतों ने रूहुल कुदस के जेरे साया हकीकी कायलियत पाई है, जबकि बहुत से ऐसे थे जो सिर्फ दिखावे के लिए बपतिस्मा पा रहे थे। उनकी कायलियत आरजी थी। यूहन्ना के दोस्त होने के नाते वो सोचते थे कि आने वाले बादशाह के साथ उनके दूसरों की निस्बत बेहतर मरासिम होंगे। अलावाजी, लोगों पर हमारा तासुर बहुत अच्छा होगा। मगर यूहन्ना उनसे बड़ी सख्ती से पेश आया। ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागू? इसीलिए तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में सोचना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है। मैं तुम्हें जता देता हूं कि खुदा अगर चाहे तो उन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। यहूदियों ने खुदा के वादे की गलत तफसीर की कि खा हम कुछ भी करते रहें, उसके वादे हमारे ही लिए हैं और अबदी हैं। खुदावन जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया, जो समंदर मोजिन करता है जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाता है, उसका
नाम रब्बुल अफवाज है। खुदावन फरमाता है, अगर ये निजाम मेरे हुजूर से मौकूफ हो जाए तो इसराइल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी कि हमेशा तक फिर कौम ना हो। खुदावन यूं फरमाता है कि अगर कोई ऊपर आसमान को नाप सके और नीचे जमीन की बुनियाद का पता लगाए, तो मैं भी इसराइल को उनके सब आमाल के सबब से रद्द कर दूंगा। यर्मिया 35:31-37।
यहूदी बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल होने के सबब सोचते थे कि वादा उन्हीं के लिए है, मगर खुदावन ने जो वादे की तकमील के लिए शर्त कायम की थी वो उसे नजरअंदाज कर गए, क्योंकि मस्कूरा बाला वादा करने से पहले उसने यूं फरमाया था, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावन फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावन को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उसके गुनाह को याद ना करूंगा। यर्मिया 33:31-34। वो लोग जिनके दिल में उसके कवानीन लिखे हुए हैं, खुदावन की तरफदारी करता है, वो उसके साथ एक हैं। मगर देखते हैं कि यहूदियों ने खुद को खुदावन से अलहदा कर रखा था, इसीलिए अपने गुनाहों के सबब वो दुख उठा रहे थे, और यही वजह थी कि वो बुतपरस्त कौम की गुलामी में थे। खताओं के बायस उनके जहनों पर अंधेरा छा गया था, और चूंकि माजी में खुदावन ने उनकी बेहद तरफदारी की थी, इसीलिए वो फखर से कहते थे कि हम दूसरी कौमों से अरफा व आला हैं, मगर वो अपने गुनाहों को ना देखते थे। इसके बावजूद इस बात का दावे जरूर करते थे कि खुदावन की हर बरकत हमारे लिए है। ये बातें हमारी नसीहत के लिए लिखी गई हैं। अगर नेथियों 11:10। अक्सर हम भी खुदा की बख्शिशों की गलत तफसीर करते हैं और सोचते हैं कि खुदावन हम पर इसलिए अपनी बरकतें निछावर कर रहा है क्योंकि हम में कोई नेकी या भलाई पाई जाती है। यूहन्ना ने इसराइली असातिजा को ऐलानिया फरमाया कि तुम्हारे फखरो घमंड, खुदगर्जी और जुल्म ने कौम को अफी बना दिया है, जबकि उन्हें बुजुर्ग अब्राहम के वफादार और मुनसिफ बच्चे बनना चाहिए था। वो रोशनी जो उन्होंने खुदा से पाई थी, उसके जेरे साया तो उन्हें नेक बनना चाहिए था, मगर वो तो बुत परस्तों से भी गए गुजरे थे। वो उस चट्टान को भूल गए जिसमें से वो तराशे गए थे, और वो उस गढ़े को भूल गए जिसमें से उन्हें खोद कर निकाला गया था। खुदा तो उनके लिए अपने वादों को पूरा करने के लिए मुस्तैद था, जैसे उसने बुजुर्ग इब्राहिम को बुतपरस्तों में से बाहर अपनी खिदमत के लिए बुला लिया, इसी तरह वो दूसरों को भी अपनी खिदमत के लिए बुला सकता है, बेशक उनके दिल सहरा के पत्थर की तरह बेजान नजर आते हों, फिर भी उसकी रूह उन्हें अपनी खिदमत के लिए जिंदा कर सकती है। वो अपना
वादा भी उनके जरिए पूरा कर सकता है। नबील ने यह भी फरमाया, अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मत्ती 10:3। दरख्त के नाम से नहीं, बल्कि उसके फल की बदौलत उसकी कदरों में नजलत होती है। अगर फल फजूल और निकमा है तो ये दरख्त को तबाही से नहीं बचा सकता। यहूदियों को यूहन्ना ने जता दिया कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी और सीरत की वजह से ही खुदा के सामने ठहर सकते हो। जिनकी जिंदगी और सीरत खुदा की शरीयत के हमाहंग में ही, वो खुदा के लोग भी नहीं। उसका संजीदा कलाम सुनकर लोग कायल होते गए। उन्होंने अपने दिल को जांचा और आकर उसे कहने लगे, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास दो कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा, ए उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा,
जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा न लेना। और सिपाहियों ने भी उनसे पूछा कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफायत करो। लूका 14:10। उसने कहा, जो खुदावन की बादशाही के वारिस हुए हैं उन्हें ईमान और तौबा का सबूत देना होगा। उनकी जिंदगियों से ईमानदारी, मेहर व मोहब्बत और फयाजी आशकारा होनी चाहिए। उन्हें खुदावन के हुजूर हदीये और गुरबा की मदद करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि बेसहारा को पनाह दें और दूसरों के सामने नेकी और मेहर व मोहब्बत का नमूना छोड़ें। इसी तरह निजात दहिंदा के पैरोकारों के लिए लाजिम है कि जो तब्दीली रूहुल कुद्स उनकी जिंदगियों में लाया है उसका सबूत फराहम करें। रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा का रहम, मोहब्बत और इंसाफ देखा जाना चाहिए, वना वो उस भोसे की मानिन होंगे जो आग में डाला गया है। दीगर, यूहन्ना बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 11:3। इसी तरह यसैया नबी ने ऐलान किया था कि खुदावंद सय्योन की बेटियों की गंदगी दूर करेगा और यरूशलम का खून रूहे अदल और रूहे सोजां के जरिए धो डालेगा। और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तेरी मेल बिल्कुल दूर करूंगा और उस रांगे को जो तुझ में मिला है जुदा कर दूंगा। यसैया 4:4-25:1। गुनाह के लिए हमारा खुदावंद भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 29:12। वो सब जो खुद को खुदावन के ताबे करते हैं उन सब के गुनाहों को रूहुल कुद्स भस्म कर देता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों से चिमटे रहें तो वो गुनाह का हिस्सा बन जाते हैं जिन्हें रूहुल कुद्स चला देता है। बुजुर्ग याकूब रात भर फरिश्ता के साथ कश्ती करता रहा और जब उसे यह मालूम हुआ कि वो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि फरिश्ता से जोर आजमा था तो पुकार उठा, मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। पैदाइश 30:32। आप जानते हैं कि बुजुर्ग याकूब ने अपने भाई ईसू के खिलाफ गुनाह किया था, मगर अब वो तायब हो चुका था। उसने अपने गुनाह का इकरार करके खुदावन से माफी तलब की थी। उसके गुनाह धो दिए गए थे और उसे खुदावन ने माफ फरमा दिया था।
उसी वजह से वो खुदा को रोबरो देखने के बावजूद जिंदा रहा। लेकिन याद रखिए, जहां इंसानों में बेबाकी का गुनाह पाया जाता है और वो जानते हुए भी तर्क करने पर राजी नहीं होते, खुदावन का रूह उन्हें भस्म कर देता है। मसीह येसु की आमद सानी पर भी बदकार भस्म कर दिए जाएंगे। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावन येसु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नीस्त करेगा। 2 थसलनीकियों 8:2। खुदावन के जलाल की तजल्ली जो रास्तबाजों को अता करती है, वही तजल्ली बदकारों को जलाकर राख कर देगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अय्याम में मसीह येसु आकर खुदा की सीरत दुनिया पर आशकारा करने को था। उसकी हजूरी में नस्ले इंसानी अपनी खताओं को देखने को थे और अपने गुनाहों को तर्क करने की बदौलत ही वो खुदावन मसीह की सोहबत और रफाकत में रह सकते थे, क्योंकि सिर्फ पाक दिल ही उसकी हजूरी में ठहर सकते थे। यूं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बनी इसराइल तक खुदावन का पैगाम पहुंचाया। बहतीरों ने उसकी हिदायत पर अमल किया। उन्हें बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। भीड़ जगह जगह उस नए के पीछे हो लेती। बास समझ रहे थे कि यही मसीह मौऊद है, मगर यूहन्ना ने हर मौके पर उन्हें उसकी तरफ तकने और ईमान लाने के लिए हिदायत फरमाई जो आने वाला था।